नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने तथा आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने कई समझौतों और दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। इसमें आपदा प्रबंधन, ऑडियो विजुअल सह निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण और रोकथाम, सेमीकंडक्टर विकास, स्वास्थ्य और औषधि, छात्रवृत्ति के संस्थान तथा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और पेनेट ऑफ मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तथा मलेशिया के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा और आतंकवाद से मुकाबले संबंधी सहयोग में विस्तार होगा।
सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरिटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे।
भारत और मलेशिया ने संयुक्त बयान में वर्ष 2024 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की दो दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची को संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ताकाइची के सक्षम नेतृत्व में भारत जापान मित्रता नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व में विचारधारा आधारित शासन ने छत्तीसगढ़ सहित उन राज्यों का काया पलट कर दिया है जिन्हें कभी पिछड़ा माना जाता था। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ एट 25, नजरिया बदलना, सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने 7.5% की विकास दर हासिल की है। श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद भाजपा के 15 वर्षों के शासनकाल में उल्लेखनीय विकास हुआ। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि वैज्ञानिकों से छोटे किसानों के लिए एकीकृत कृषि मॉडल विकसित करने का आह्वान किया है। बेंगलुरु के निकट भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी और अन्य कृषि आधारित खेती को एकीकृत करने वाले ऐसे मॉडल छोटे किसानों को बेहतर आय प्राप्त करने में सहायता करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पश्चिम बंगाल में सिउरी रोड ओवरब्रिज और कुमारपुर रोड ओवरब्रिज का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने आसनसोल बोकारो रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य में रेल अवसंरचना को मजबूत करने, सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्रीय संपर्क में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने आयकर नियमों और प्रपत्रों 2026 के मसौदे पर जनता और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। ये टिप्पणियां इस महीने की 22 तारीख तक आयकर कार्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर भेजी जा सकती हैं। आयकर कार्यालय ने सूचित किया है कि मसौदा नियम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और सहभागी तथा प्रभावी नियम निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। हरियाणा के सूरजकुंड मेले में झूला टूटने की दुर्घटना के संबंध में सूरजकुंड थाने में मनोरंजन कंपनी के मालिक मोहम्मद शाकर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मोहम्मद शाकर और एक अन्य आरोपी नितेश को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कनाडा के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार से ओटावा में मुलाकात की। श्री डोभाल दोनों देशों के बीच नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के क्रम में कनाडा यात्रा पर हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से हरा दिया है। 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तरी आयरलैंड की टीम 19 ओवर 5 गेंदों में 143 रनों पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले आज मुंबई में खेले गए T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने नेपाल को 185 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 180 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।